خوش آمدید خیری صاحب.
سلامت رہو.
جی حاجی صاحب، میں کل تہران لوٹ رہا ہوں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی لوٹ جاؤ. جانتے ہو کیوں؟ محسن خیری نے چھاونی کو فلاح کے حوالے کر دیا ہے، سمجھے؟ تم یہاں رہے تو مطلب کل سے تم بھی کچن میں برتن مانجو گے. یہ تم کیا کر رہے ہو؟
پوزیشن معلوم کرنے.
کیا مطلب؟
مطلب یہ جاننا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے جانا ہوگا.
وہ کس لیے؟
تاکہ سلمت آباد کے راستے میں بھٹک نہ جاؤں.
پھر تم نے کوئی بس دیکھ لی جس کے بوفے میں چھپنا چاہتے ہو؟ ابھی تک نہیں سمجھے کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوتا؟
پیدل جانا چاہتا ہوں. ہاتھ مت لگاؤ.
ایک ادھار رہا کل لے لینا مجھ سے.
کل نہیں ہوگا کہ لے سکوں، یہ میں نے راستے کے لیے چرائے ہیں.
مطلب سچ مچ پیدل جانا چاہتے ہو؟
ہاں.
کوئی مزاق ہے کیا؟ اتنے جو لوگ پہرا دے رہے ہیں انہیں چکمہ کیسے دو گے؟
اتنے ہبڑ دبڑ میں ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوتی ہے. میں بھی پیچھے کے مورچے سے نکل جاؤں گا. احمد میرے ساتھ اتنی باتیں مت کرو، میں پہلے سے ڈسٹرب ہوں. زیادہ تنگ کرو گے تو میں سہرے میں گم ہو جاؤں گا یار.
پیچھے کے مورچے سے جاؤ گے؟
پیچھے کے مورچے سے.
فاصلہ اتنا کم ہے کیا جو پیدل جاؤ گے؟
فاصلہ زیادہ ہے احمد، بہت زیادہ.
کم سے کم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ.
کس چیز کو؟
اس کو
دے دو مجھے، دے دو مجھے.
تمہیں تو پورا خزانہ ملنے والا ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا تمہارے کس کام؟
یہ صرف سونے کا ٹکڑا نہیں ہے، لاؤ دو مجھے.
بھائی صاحب تہران میں کوئی لنگر تو نہیں بیٹھ رہا، وہاں میں خالی جیب کیا کروں گا؟
وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے. یہ کنگن مجھے دو، یہ کسی کی نشانی ہے، تمہیں نہیں دے سکتا.
تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اس رات تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری ماں نے دیا ہے، کہیں پھنسو گے تو کام آئے گا. اب میں بھی پھنس گیا ہوں.
یہ مجھے دے دو، میرے پاس تھوڑے سے پیسے، انہیں دے دوں گا.
تمہارے ان پیسوں سے میں صرف بس کا ٹکٹ ہی خرید پاؤں گا. البتہ یہ میرے پاس رہے گا تاکہ میں سڑک پہ نہ رہوں. اگر تم زندہ لوٹے تو میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گا تاکہ تم اس جیسا نیا خرید سکو.
نہیں کا کیا کرنا ہے؟ یہ انٹیک ہونے کی وجہ سے قیمتی ہے.
ایسا تو ہم نے قالین کے بارے میں سنا.
یہ قالین سے زیادہ اہم ہے، لاؤ دو مجھے.
میرے بھائی تم پر کچھ میرے احسانات ہیں.
ہوں بھی تو اتنے نہیں کہ ان کی خاطر میں تجھ پر 700 سال پرانے کنگن نثار کر دوں.
کتنے سال کے؟
70 سال کے.
تم نے تو 700 سال کہا تھا.
میں نے کب کہا؟
ابھی ابھی.
نہیں کہا.
میں نے ابھی سنا.
تمہارے کان خراب ہیں.
میرے کانوں کو خراب کہہ کے اپنی بات چھپا رہے ہو؟
جیسے سمجھو.
اتنا پرانا کیسے پتا چلا؟
اندازہ لگایا میں نے. احمد جاتے ہو یا زبردستی کروں؟ تمہیں معافی قسم دے دو مجھے.
جو پوچھوں گا اگر صحیح جواب دیا تو اسے میں تمہیں دے دوں گا. یہ اتنا پرانا ہے کیسے پتا چلا؟
بتا دیا تو پھر بالکل نہیں لوگے.
وہ تو اب بھی میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں.
سروشی رکشی کے پاس گیا تھا.
وہ تو تم سے بھی زیادہ بدتر ہے. بچپن میں بہت ڈینگے مارا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکالا گیا.
پھر تو جھوٹ ہی بولا ہے نا.
اگر جھوٹ بولا ہوگا تو اس کا مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ تو تہران میں ہوٹل میں ہی خرچ ہو جائے گا سب.
جھوٹ نہیں بولا تھا کیونکہ اس کا باپ بھی دکان میں بیٹھا تھا.
یا نہیں
تھا؟ اس نے ہر طرف سے چیک کی، آخر میں کہا کہ سلجوکیوں کے زمانے کی ہے.
یعنی فتح علی شاہ؟
ہاں نا، یعنی احمد شاہ سے 600 سال قبل.
قیمت بھی رکھی تھی؟
نہیں.
ہاں یا نہیں؟
ہاں. 1 لاکھ تومان.
तुम बेवकूफों के बेवकूफ ही रह गए असद। इतना सारा खजाना हमारे हाथ में होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं इतने सारे भाइयों के बीच?
अहमद दे दो, मुझे देर हो रही है।
मेरे प्यारे भाई, इस वक्त मुल्क में जंग हो रही है और मुल्क की सरहदों पर कोई खास कंट्रोल भी नहीं है। हम दोनों टाइयां बांधेंगे और उन मालदार लोगों के पास जाएंगे, उनका माल सस्ते में खरीदेंगे और अच्छी कीमत में उसे बाजार में बेच देंगे। तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि हम लोग 2 साल में इतना कमा लेंगे कि सीधे आसमान पे पहुँच जाएंगे।
अहमद देखो जा रहे हैं, मौका हाथ से निकल गया।
इन्हें जाने दो बेवकूफ। सरोज जब 1 लाख कीमत लगाता है तो समझ लो कि बाजार में 10 लाख होगी। मेरा भी 5,20,000 समत कंपनी के पास से सारा का सारा पैसा स्मगलिंग में लगा देंगे मेरे भाई।
अहमद देर हो रही है, दे दो।
बेहतर के तुम अपने खजाने को ढूंढने जाओ। तुम जैसा मनुष्य आदमी मेरे साथ नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से।
नहीं दोगे क्या?
नहीं।
अहमद याद रखो, जहन्नुम में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, डस के रहूंगा तुम्हें।
फिल्मों की तरह।
क्या है?
क्या ये टुकड़ा उस खजाने का हिस्सा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो?
नहीं।
तो क्यों सुरुष के पास इसके बारे में मालूम करने गए थे?
तुम्हें क्या?
अली जा, हमसे कुछ बुरा देखा हो तो माफ कर देना।
हाजी साहब, आप तो खूबियों का खजाना थे, जा रहे हैं?
नहीं,
जब तक गले नहीं मिलोगे तब तक नहीं जाऊंगा।
आओ गले मिलो।
तुम अपना ख्याल रखना।
मुखलिस हूं, इजाजत दो। फरज साहब, हम चले, मुझे माफ कर देना। तुम लोग साथियों दुआ करना मेरे लिए।
खुदा तुम्हारे हमरा हो।
इजाजत। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारे हमरा हो।
खुदा हाफिज। इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बेगैरत, यहाँ क्या कर रहे हो?
आया हूँ तुम्हारी अमानत वापस करने।
ले लो। ठीक है, अब जाओ यहाँ से।
कैसे जाऊँ?
यहाँ तक कैसे आए?
बड़ी मुश्किल से।
इसी तरह वापस लौट जाओ।
निकम्मे आदमी, अब तक सिर्फ इतना सा काटा है? दे दो मुझे, मैं काटता हूँ।
खुद को तहरान का फन्नेखा समझते हो? 2-4 दफा और मारूं क्या?
हाँ तो लो, मारो और मारो।
अहमद, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे?
मैं तुम्हारी किस्मत का सितारा हूँ बदबख्त, साथ नहीं रहूंगा तो मारे जाओगे।
ये रास्ता मुझे अकेले तय करना होगा।
ये कहो ना, अकेले हड़पना चाहते हो?
तुम ही तो आज तक कह रहे थे कि मेरे बाबा की सारी बातें अफसाना है। झूठ क्यों बोल रहे हो?
गड़े मुर्दे मत उखाड़ो असद, पिछली बातें भूल जाओ और आगे का सोचो।
जबरदस्ती नहीं चलेगी।
तुझ पे खाक असर, जब एक कंगन की कीमत इतनी है तो पूरे खजाने की कीमत कितनी होगी?
ये लो तुम्हारा हिस्सा, मेहरबानी करके मुझे अकेले जाने दो।
ठीक है, चाहो तो लौट जाता हूँ, मोर्चे से निकलकर सीधे सिपाहियों के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। जाऊं मैं?
आधे रास्ते में छोड़ दूंगा।
मैं भी यही समझता हूँ।
चलो अब काटो।
पीछा करूं इंस्पेक्टर साहब? जनाब, जनाब पीछे जाऊं?
हाँ जाओ।
आप हैं या वायरलेस से किसी को घर पर नजर रखने के लिए बुलाऊं? अभी किसी को बुलाता हूं, चलता हूं। सलाम, यहां क्या कर रहे हो? पता है मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे ख्याल में बेहतर है तुम इस केस से इस्तीफा दे दो।
देखो, मेरा ख्याल है कि तुम अपनी तजवीज अपने ही पास रखो।
नहीं, सच कह रहा हूं, एक मुद्दत से तुम पुराने वाले जाबिर नहीं रहे। तुम्हारे लिए तो एक एक सेकंड की भी अहमियत होती थी, और अगर हम किसी डेड लॉक पर पहुंचते थे तो तुम फौरन एक नई राह हल निकाल लेते थे। इससे कहीं ज्यादा सख्त केस तुमने मिनटों में हल किए हैं, लेकिन अब कई दिन से तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हम बगैर किसी नतीजे पे पहुंचने के अपने ही गिर्द घूम रहे हैं। तुम दो राह में फंस गए हो, हैरान हो कि दिल की बात पर अमल करूं या ड्यूटी पर। लेकिन अगर तुमने ड्यूटी पर अमल किया तो दिल की मुराद हरगिज नहीं पाओगे, और ऐसा हुआ तो सारी उम्र।
मनोचहर
क्या?
असद की माँ और बहन के अलावा मनोचहर भी असद के बाप के अफसाने के पीछे लगा हुआ है। मर्जिया साहिबा ने हमें यह नहीं बताया, मुझे लगता है हम मनोचहर से उगलवा सकते हैं।
ये बात तुम अब क्यों कह रहे हो?
तो कब कहता?
उसी वक्त जब तुम्हारे दिमाग में आई। अब ये ना कहना कि तुम्हारे दिमाग में अभी आई है, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूंगा। तुम उस लड़की को कितना चाहते हो? इस्तीफा दे दो जाबिर। जब इंसान पहली दफा आशिक हो जाता है, अगर उसे अपना इश्क ना मिले तो सारी उम्र अजाब में रहता है। असद को 15 से 20 साल तक जेल काटनी होगी। यकीन कर लो, अगर असद को जेल वापस लाओगे तो मर्जिया को हाथ से खोदोगे।
मर्जिया साहिबा?
अच्छा, कहाँ?
मनोचहर।
कौन है फरीबुर्स?
ये वही दोनों पुलिस वाले हैं।
असद माँ की बात का सच मालूम करने गया है। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, मैं किसी और तरह से पूछता हूँ। असद के बाप का किस्सा क्या है कि असद माँ के कहने पर उसकी सच्चाई मालूम करने गया है? फजल अली की अमानत जो असद के हाथ में है क्या चीज है? ये ना कहना कि जानते नहीं हो, क्योंकि ये वही चीज है जिसकी खातिर तुमने घर उनके हाथ से निकाला है। सुना कि नहीं?
जाबिर, इंस्पेक्टर साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हमारी शिकायत कर देगा। जाबिर साहब आओ चले।
देख लूंगा।
आखिरकार तुम पीछे लग ही गए असद।
अफराज से कहो कि एक पल के लिए भी आंखों से ओझल न हो।
मुझे यकीन है कि ये तरीका कामयाब रहेगा।
यकीन है मनु, चाहे बेकार नहीं बैठेगा। बस ध्यान रहे, ये आदमी बहुत तेज है। तुम्हारी छोटी सी गलती से भी वो समझ सकता है कि हमने उसे तामा बनाया हुआ है। मुसाफिर खाने वाली बात पर दोबारा तकरार न हो।
अपने बेहतरीन अफराद को निगरानी पर लगा दूंगा।
स्टार्ट करो, चलो।
मतलब बस अब इश्क और आशिकी के पीछे नहीं जाना?
कोई आशिकी नहीं है, केस की तह तक पहुंच के रहूंगा। चलो
मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मैडम यहाँ वर्जिश कर रही हो तो मत आना। आओ चलो यहाँ चल के बैठो।
फरीबोर्स, फरीबोर्स, मैं तुमसे कह रही हूँ फरीबोर्स, दरवाजे पे कौन था?
पुलिस वाले थे मैडम।
क्या काम था?
साहब से बहस कर रहे थे।
शिकायत करने वाला मर्द था या औरत?
डरिए मत मैडम, तीसरी बीवी दूसरी बीवी के घर झगड़ा सुलझाने के लिए क्या पुलिस ला सकती है?
तो पुलिस वाले को क्या काम था?
साहब ने अभी अभी किसी जगह जमीन हड़प ली है, इसीलिए वो आए थे।
तुम्हें यकीन है?
हाँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह ध्यान रखे हूँ।
फरीबोर्स, गाड़ी की चाबी लेकर आ जाओ।
तुमने अभी तक इस खबीज को सही तरह से नहीं पहचाना। देखो फरीबोर्स, अपने हवास को अच्छे से जमा रखो। अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मैं तुझे खड़े खड़े काम से निकाल दूंगी, समझे?
जी मैडम, जो हुक्म।
तरबूज लाओ मालकिन।
नहीं,
जी जनाब। गाड़ी स्टार्ट करो, चलें।
कहाँ?
तुम गाड़ी स्टार्ट करो, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए।
चाहिए।
ऐसा ना करो, माफ कीजिएगा मालकिन।
ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। अरे भाई फ्रिज को ऊपर करो। अरे भाई फ्रिज को ऊपर करो जरा सा। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है। ये दरख्त का ख्याल रखना जरा सा, टकरा ना जाए यहाँ।
अरे आ जाओ मेरी गोद में।
सीधे लेकर जाओ और दाहिनी तरफ किचन में रख दो, दीवार से ना टकराए, ध्यान रखना।
सलाम मोहतरमा।
वो क्या था?
फ्रिज है।
तो दो दरवाजे किस लिए थे?
इम्पोर्टेड है, बहुत महंगा है। ये ना समझना कि सेकंड हैंड है, स्मगलिंग का माल है, इसलिए कार्टून में नहीं है।
किस लिए खरीदा?
खरीद लिया, क्या बुरा काम किया?
इससे मेरा दिल जीतना चाहते हो?
अरे नहीं, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया।
हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो।
हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर लें, तुम ताना देना नहीं छोड़ती। मैं सफर पर जा रहा हूँ।
दोनों चलेंगे।
देखो मोहतरमा, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ औरतों को नहीं ले जा सकता।
क्यों?
क्योंकि मैं महाज जंग के आसपास जा रहा हूँ।
तुम्हारे नजदीक पटाखा भी छूटे तो डर के गिर जाते हो, महाज की बात करते हो।
अगर तुम्हारे सामने कोई छोटी सी गलती भी कर देना तो आइंदा 100 साल तक ताने देती रहोगी।
अगर तुम सौतन को लाने की गलती छोटी समझ रहे हो तो सफर पे जाना भूल जाओ, वो भी अकेले।
मैंने ये तो नहीं कहा कि सौतन ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस दफा मुझसे छोटी सी गलती हो गई। उस बेचारी लड़की का कोई नहीं था तो मैंने सरपरस्ती कर ली, देखा कि मैंने फौरन तलाक दे दिया।
अगर मेरे मामू तुम पर और तुम्हारी गाड़ी पर ट्रक नहीं चढ़ाते तो क्या तुम उसे फिर भी तलाक देते? ये मत समझना कि जो हश्र तुमने अपनी पहली बीवी के साथ किया तुम मेरे साथ भी वही कर सकोगे। तुम अपना दो दरवाजे वाला फ्रिज भी ले जाओ, नहीं चाहिए।
गलती तो मेरी ही थी कि इतनी अच्छी औरत को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी कर ली।
बहरहाल जब तक मैं जिंदा हूँ दूसरी बीवी का नाम तक नहीं लेना।
फर्ज करो कि मैंने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारे पास तो अदालत का हुक्मनामा मौजूद है, मेरी आधी दौलत अपने नाम कर सकती हो और फिर तलाक ले सकती हो, ये बुरा है क्या?
जाहिर है कि बुरा है, मुझे पूरी जायदाद चाहिए। तुम्हारी बाकी बची दो तीन साल की जिंदगी के बाद तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी।
साहब किचन में इसे किस तरफ रखना है?
किसी भी तरफ नहीं, उठाकर बाहर ले जाओ।
बारिश में बाहर गीला हो जाएगा।
मैंने कहा ना बाहर ले जाओ।
वापस करना चाहो तो हम इसे वापस नहीं लेंगे।
मैं उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तुम बाहर लेकर आओ।
चौबीस घंटे हो गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कल तो पहुंच जाएंगे ना?
नहीं पता,
गोलियों की आवाज भी नहीं आ रही है। हम कहीं गुम तो नहीं हो गए?
इसमें डब्ल्यू क्यों नहीं है?
डब्ल्यू क्या चीज है?
सुहेल कह रहा था कि डब्ल्यू यानी मगरिब, इसमें तो एम है।
तो एम से काम करो, डब्ल्यू से क्या करना?
मेरे भाई अगर गांव की तरफ जाना है तो इन पहाड़ों की तरफ जाना होगा। ये पहाड़ मगरिब की तरफ है। मगरिब यानी कहाँ? यानी उसी तरफ जो कुतुब नुमा में डब्ल्यू की अलामत से दिखाया गया है। आओ इसी एम की तरफ चलें, देखें पहुंचते हैं या नहीं।
अगर नहीं पहुंचे तो?
तुम्हें तो पहुंचना ही नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हें किसी न किसी जगह छोड़ ही दूंगा।
ला मुझे दे।
उठो चलो।
सलाम।
क्या काम है?
क्या तुम्हारे दीन में सलाम का जवाब वाजिब नहीं है?
भेड़िये के सलाम का मतलब लालच है। अलैके सलाम।
तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूँ।
खुदा वो दिन न लाए कि हम तुम्हारे मोहताज हों।
कड़वी तो ना बनो रुखैया।
जाओ ताकि ना बनूं।
तुमसे मिलने आया हूँ, कहाँ जा रही हो?
किसने कहा आने को? मैंने कहा।
तुम मेरी बहन हो, इन हालात में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी तब जब तुम्हारा बेटा बंदूक उठाकर जंग को चला गया है।
अब तो गया नहीं है जो तुम्हें अब फिक्र होने लगी है।
कई बार आना चाहा लेकिन तुम्हारी नाराजगी से डर रहा था।
सही डर रहे थे। जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ सुना बैठूं।
ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम ये सामान तो रख लो।
ना तो मैं मुस्तहक हूँ और ना ये सामान हलाल पैसों से आया है।
इतनी सख्ती से जिंदगी की गाड़ी चलाते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकता।
जो रोटी मैं कमाती हूँ उसका शरफ तुम्हारे इस हराम के खाने से ज्यादा है।
मेरा यकीन करो ये हलाल पैसे का है रुखैया।
कहना चाहती हो कि इससे लोगों का हक निकाल चुके हो।
लोगों का कौन सा हक?
तुम्हारे पास जो कुछ भी है सलमताबाद और गाँव वालों की जमीनों को बेचने की बरकत से है। मुझे याद है कि तुमने फौजी बगावत के बाद उस फला खान के साथ मिलकर वो सारी जमीनें अपने नाम कर ली और खुद मालिक बन गए।
कहती हो बगैर मालिक की जमीन, तो इसमें क्या गलत हुआ?
खुश्क साली थी इसलिए लोग अपनी जमीनें छोड़कर चले गए, वरना ये जमीनें बेमालिक नहीं थी। तुम अगर सच कह रहे हो और अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो जाओ वो 500-600 हेक्टेयर जमीनें जो तुमने उनके मालिकों से हड़पी है उनको जाकर लौटा दो, उसके बाद मेरे पास आओ, सोचती हूँ क्या करती हूँ।
हुसैन की क्या खैर खबर? अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है।
किस लिए बैठ गए यहाँ पर? चाय वाय नहीं है मेरे पास।
अब तो 4 साल होने को आ गए हैं रुकैया।
तुम मेरे बेटे की फिक्र मत करो।
मैं तुम्हारी इस बुरी हालत को देखता रहूं और कुछ ना करूं नहीं हो सकता। अब अगर वो वापस ना आया तो क्या होगा रुकैया?
मेरा खुदा मेरे साथ है, वही काफी है। खुदा ने उसे बख्शा है और जब वो चाहेगा उसे ले लेगा। तुम जाओ, अपनी फिक्र करो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है।
क्या तुम चाहती हो कि उसके बारे में मैं कुछ पता करूं? शायद इस बाबत कुछ सुराग लग जाए।
मैं चाहती हूं यहां से निकल जाओ। निकलो। मैं कह रही हूं निकल जाओ। निकल जाओ।
टूट गया फरीबोस।
घर चले जनाब।
मेरी बहन ने एक काम मुझसे कहा था जिसको मैं नहीं कर सका। मुझसे कहा था कि उसके बेटे को ढूंढ कर लाऊं। इतने बरसों के बाद उसने मुझसे कुछ मांगा और मैं वो भी ना दे सका। पूरी ने करने ना दिया। मुझसे कहने लगी, तुमने बरादरी का हक खूब अदा किया। तुमने देखा उसने कैसे मुझे घर से निकाल दिया। चलो घर चले।
जब भी मैं पेरिस जाती हूँ सिर्फ शॉपिंग ही करती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। ये केला खाओ ना। ये सारे फल मैं इस्तांबुल से लाई हूँ। यहाँ पर तो ये सब मिलते नहीं है, बहुत कमयाब है यहाँ। इनको लाने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन ठीक है, कमयाब है ना यहाँ। लेकिन चलेगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि इस्तांबुल में मैंने इतनी खरीदारी की कि मनु चेहर कह रहे थे कि इतनी खरीदारी का क्या करोगी, ये सब किसके लिए खरीद रही हो? मैंने कहा मैं तो ऐसी ही हूँ, शॉपिंग की दीवानी हूँ। इसलिए जितना हो सका मैंने खरीदा।
अपने अपने घर जाइए, महफिल खत्म हो गई। जो दिल में आएगा वो करूंगा मैं। लोगों के जवान महाज पर मर रहे हैं, उनकी माएं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं, और तुम लोग यहाँ बैठकर मजे उड़ा रही हो और दुनिया के कमयाब फूड खा रही हो। जाओ जाओ यहाँ से, अपने अपने घर जाओ।
बाहर
जाओ।
मैंने पूछा ना क्या हुआ?
निकाल ना, बाहर जाओ।
मनुचेहर तुम हद से ज्यादा उलझ रहे हो।
कह रहा हूँ कि बाहर निकलो। तुम लोगों ने मेरा जी आराम कर दिया है, क्या चाहिए तुम्हें?
क्या
मुझे कुछ नहीं खाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम जाओ यहां से, निकल बाहर हो यहां से।
इतनी मेहनत करो, काम करो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, साहब तो खाना खाते नहीं है। मैडम, उन्होंने खाने की प्लेट दीवार पर दे मारी और मुझे भी बाहर निकाल दिया। मैडम, उन्होंने 24 घंटे से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है।
जाए जहन्नम में, भूख से मर जाने दो।
मैडम, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अगर सिलसिला यही रहा तो मौत तो नहीं आएगी, इस तरह ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, 10 साल के लिए बिस्तर पर पड़ जाएंगे और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। समझी क्या आप?
सच कह रहे हो फरीबुर्ज?
हाँ मैडम, भूख हड़ताल करना वो भी इस उम्र में डायबिटीज होने से भी बुरा है।
जो मुसीबत भी आएगी उसकी वजह से, मुझे क्या?
मैडम मैं एक बात बोलूं?
मनोचेयर की तरफदारी करना चाहते हो?
नहीं मैडम, आप मेरा खर्च पूरा करती हैं, मैं कैसे उनकी तरफदारी कर सकता हूँ?
तो उस पर रहम क्यों आ रहा है?
मैडम, मेरा दिल उनके लिए परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी बहन के लिए परेशान हूँ।
किसकी बहन? मनोचेहर की बहन?
हाँ मैडम, साहब का मूड उन्हीं को लेकर खराब है।
झूठ भी बोलने लगे हो। मनोचेहर और रुकैया एक दूसरे के सख्त दुश्मन है।
मैं उनको लेकर उनकी बहन के घर गया था मिलने को। उनका जो बेटा गुम हो गया है, इनको कह रही थी ढूंढने को, इसीलिए वो नाराज थी इनसे। इसीलिए साहब महाज जंग पर जाना चाहते हैं। जब आपने इजाजत नहीं दी तो वो अपनी बहन के घर गए ये बताने के लिए कि वो नहीं जा सकते। उनकी बहन ने भी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। कसम खाकर कहता हूँ, जो भी पूरी बात मैं आपको बताना चाहता था वो यही थी। अब आगे से जो भी आप हुक्म करेंगी मैं उसकी इताअत करूंगा।
क्यों मार रहे हो मुझे?
तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो?
मैंने लात कब मारी?
अभी तो। हम पर मार्टर के गोले बरसा रहे हैं। असद ही हमें खत्म करना चाहते हैं। पता नहीं इनको हम कैसे मिल गए। देखा, मुफ्त में हमारी जान के दर पे है। जल्दी भागो असद, भागो असद मेरे पीछे, यहाँ से, यहाँ से।
अब क्या करें, अब क्या करें?
कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
कोई रास्ता निकालो यार, कोई रास्ता निकालो।
अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
सफेद रुमाल है तुम्हारे पास क्या?
मार्टर गोले को सफेद रुमाल दिखाओगे क्या?
अरे वो हमें देख रहे हैं जो सीधा हमारी तरफ फायरिंग कर रहे हैं।
लगता है हमें गुम कर दिया, गोले हमसे दूर हो रहे हैं। असद, लगता है इन्हें हमसे कोई काम नहीं है।
मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है?
हाँ।
नहीं,
बाद वक्त वो देखो, मैं कह रहा हूँ है।
सच कह रहे हो? हाँ।
हम इराक की जमीन में चले आए हैं।
नहीं, नक्शे के मुताबिक हमें अपने इलाके में होना चाहिए।
तो फिर इराकी गाड़ियों का यहाँ क्या काम है?
नहीं पता, शायद अपनों की है।
यानी इराकी वहाँ बैठे हमारी गाड़ियों को निशाना बना रहे, क्या ये मुमकिन है?
हो सकता है, लेकिन सुहेल कह रहा था कि एक फर्द ऐसा होना चाहिए जो मोर्टार के लिए निशाना बताए।
क्या करें?
निशाना बताए।
इसका क्या मतलब है?
एक निशाना जो मोर्टार चलाने वाले को देते हैं।
यहाँ तो कोई निशाना बताने वाला नहीं है।
कोई नहीं।
गोली से मारा ना? गोली की आवाज बहुत नजदीक थी, मेरे ख्याल में हमारे आसपास ही है।
क्या है, कौन है, कौन?
इस आदमी का काम था आवाज मत निकालना, इसे जाने दो।
पता नहीं वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है।
चुप हो जा सत।
जिहाद निशाना,
मेरे ख्याल से निशाना बता रहा है ताकि उस पे कब को भी मार सके। उसको भी मारा तो उन बेचारों का किस्सा भी खत्म हो जाएगा।
अब क्या करें अहमद?
कुछ नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हिले तो हम भी मारे जाएंगे।
यार अब ये सब के सब मारे जाएंगे।
जाने दो उन्हें जहां जाना चाहते हैं। मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, तुम लोग जल्दी करो। जहाँ बोला वही गोला दाग दो। निशाना ठीक है, मारो।
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این فضا